अब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक और जो नेमत मिली थी उसकी तरफ बात चलती है। पहले तो चींटियों की बात सुनकर अल्लाह ताला की नेमतों पे शुक्र अदा करते हुए दिखे, अब वापस अपने गिरोह की तरफ आते हैं, जो भी उनके लोग थे, जो उनका लश्कर था। तो देखा क्या, वतफक्कदत तैर फ़काल माली अला अरल हुदहुद, और आपने एक रोज़ परिंदों का जायज़ा लिया तो फरमाने लगे, क्या वजह है कि आज मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। कोई स्टूडेंट था इनका, किधर है हुदहुद? हैं अम कान मिनल गायबीन, या है ही नहीं वो आज, यानी है और मुझे नहीं नज़र आ रहा। इतने लोगों में इसे अंदाज़ा होता है कि इतना बड़ा गिरोह था उनके आगे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि है नहीं, किधर गया, कहाँ चला गया, या फिर आज छुट्टी कर चुका है। अगर छुट्टी कर गए तो ला वो अस्सी बंद। यकीन करें मैंने इन आयतों पे किसी आलिम की बात सुनी थी, इस आयत को दलील उन्होंने दी कि उस्ताद तालिब इल्म को ज़िबा भी कर सकता है छुट्टी करने की वजह से। ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, ये एक सिर्फ जोक की बात थी, लेकिन कोई मसला ना समझ लें कि हर छुट्टी करने वाले के पीछे कोई छुरी लेके चल पड़ा है। लेकिन इनको गुस्सा किस बात पे आया कि मुझे बता के क्यों नहीं गया। देखिए, ना आने वाले पे गुस्सा नहीं आता, बग़ैर बताए ना आने वाले पे गुस्सा आता है, क्योंकि उससे उम्मीद होती है कि वो आएगा। कहने लगे, किधर गया वो? लाउज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, अगर वो गैर हाजिर है तो मैं तो इसको ज़रूर सख्त सज़ा दूंगा, या फिर औला अज़्बहन्नहु, या फिर उसे ज़िबाही कर डालूंगा, और अगर बचना चाहता है इससे तो औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, नहीं है तो लानी पड़ेगी उसको मेरे पास कोई दलील। किस बात की एप्लीकेशन? ना आने की वजह, कोई सॉलिड रीज़न, कोई वजह थी कि क्या इतनी मजबूरी थी कि इसके बगैर जा नहीं सकते। यहाँ लफ्ज़ों को थोड़ा सा साथ साथ ही देखते जाइए। तफक्कदा का लफ्ज़ जो है ये फ़ा काफ दाल से है। उर्दू में आपने एक लफ्ज़ सुना होगा फुकदान, आजकल फलां चीज़ का फुकदान है, वही लफ्ज़ है ये। किसी मजमे के मुतल्लिक हाजिर और गैर हाजिर की तहकीक करने के लिए यह लफ्ज़ आता है, लेकिन इसका मानी अमूमन खबरगीरी और निगेबानी का होता है। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े गिरोह को चलाने वाले थे, इसके बावजूद भी गाफिल नहीं थे, हुक्मरान थे, लेकिन परिंदों तक पे नज़र रखते थे, कहाँ हैं। और कहते कि इनके लश्करों में एक दस्ता सिर्फ परिंदों का हुआ करता था, और एक बेदार मगज़ फरमा रवा की हैसियत से अपने लश्कर की कड़ी निगरानी करते थे, कोई अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर ना हो, फौजी नज़्म व ज़ब्त में किसी तरह की गड़बड़ पैदा ना हो। अब जब देखा तो वहाँ खुद खुद गायब था। अब ऐसा शख्स जो इतना मुनज़्ज़िम में इतना ज़्यादा अच्छा तदबीर करने वाला, प्लानिंग करने वाला था कि उनके लश्कर का एक शख्स जो है वो बग़ैर इजाज़त के जहाँ चाहे जिधर चला गया, तो शुरू में तो हैरत हुई कि भाई किधर है ये। देखिए, शुरू में गुस्सा नहीं है, इससे क्या होता है कि जो बादशाह है या जो भी एक ऐसा लीडर है कि जो दूसरों पे गौर करता है, तो वो पहले तो फिक्र करता है उसके ना आने पे, उसके मौजूद ना होने पे। पहले स्टेप में बदगुमान नहीं होना, पहले का फका मान लिया, ये बहुत खूबसूरत सा सॉफ्ट सा स्टाइल है, क्या हो गया है, मान लिया, खैरियत तो हो, उसका हाल कैसा है, वो ठीक भी है कि नहीं है, उसके साथ कोई मसला तो नहीं बन गया। तो पहले मरहले पे बदगुमान नहीं होना चाहिए, अंदेशा, खदशा, अल्लाह खैर करे उसके साथ सारा मामला ठीक ठाक हो। फिर उसके बाद ला अरल हुदहुद, आज मुझे हुदहुद नहीं दिखता। हुदहुद भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक शाहकार है परिंदा, इसकी भी एक डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखना चाहें तो आपको दिखा देंगे। ज़मीन के नीचे भी देख लेता है, कहाँ पानी है, कहाँ तेल है, क्या है, यानी ये सैंड जो है ना, मिट्टी या डस्ट जो हमें दिखती है, ये इसको शीशे की तरह दिखती है, और इसके नीचे जो कुछ छुपा हुआ है वहाँ, इसीलिए जहाँ भी लोग हुदहुद को देखते हैं ना रहते हुए, फिर वहाँ डगिंग करते हैं, वहाँ से खुदाई करके पानी निकालते हैं। अब हुदहुद के ना होने पर अमकान मिनल गायबिन, ये बड़े मुख्तलिफ जुमले हैं, एक एक और अंदेशे का इजहार होता है कि ये हुदहुद की गैर हाजिरी कि मेरे किसी कसूर की कोई सज़ा तो नहीं है, कहीं अल्लाह की नेमतों के शुक्र में कमी तो नहीं आ गई मुझसे कि एक परिंदा ही मेरा गायब हो गया। इससे आप देखिए कि हमारे असलाफ का अमल क्या हुआ करता था, कि जब उनकी किसी नेमत में कमी आती थी, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आती थी, तो उसके इजाले के लिए मादी इसबाब की तरफ नहीं देखते थे कि क्या कमी है, क्या मजबूरी है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, بلکہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ ضرور ہم سے اللہ کے حق کے نعمت میں، شکر میں کچھ کمی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، ہم سے یہ نعمت چلی گئی۔ اسی طرح ایک کسی کا قول ہے کہ یعنی ان حضرات کو جب اپنی مراد میں کامیابی نہیں ہوتی تھی تو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم سے کیا قصور سرزد ہو گیا۔ اب جب یہ غور کر لیا، مان لیا کیا وجہ ہے، تو پھر آخر میں کہا اچھا پھر ہم کان من الغائبین، یہ کہیں غائب ہو گیا، آج کوئی وجہ ہو گئی ہے کہ یہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں لفظ دیکھیے گا کہ ام کانا، ام یہاں معنی بل کے، یعنی بل میں نے بلکہ وہ چلا گیا، یعنی یہ بات نہیں کہ خود خود کے دیکھنے میں میری نظر نے خطا کی ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ واقعی وہ آج نہیں آیا ہوا۔ حضرت ابن عباس سے ایک سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے خود خود کی تفتیش کی آخر کیا وجہ پیش آ گئی، یعنی کیوں حضرت سلیمان کو خود خود کی کمی محسوس ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود خود کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کو فکر یہ تھی کہ اگر خود خود نہ ہوا تو پھر ہم کہیں ایسی جگہ پڑاؤ نہ ڈال دیں کہ جہاں پانی نہ ہو، اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ بس صرف ایک شخص پورے گروہ کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ صرف ایک شخص کا کوئی کام بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی دے دیتا ہے۔ ہر بندہ اگر خود خود ہی بن جائے نا تو وہ مواقع ہی ڈھونڈتا رہے کہ جہاں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ایک شارٹ کورس صرف ان پرندوں کے بارے میں اور ان مخلوقات کے بارے میں کرانے کی ضرورت ہے، اور صاحب دل لوگوں کو بلایا جائے جو دل لے کر آئیں، اور انشاءاللہ سمر میں کر سکتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے، ینگ بچے، کہ دیکھو اللہ نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے اتنی باتیں کی اس پہ، اتنا کچھ کہا، اور ہم ان باتوں کو یوں گزر جاتے ہیں، ہاں تھا کوئی خود خود نہیں، اللہ کی باتیں ہیں، کیسے اس میں کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان جب اس کو کسی جگہ رکھتے، جب یہ جگہ بتاتا، پھر اس کے بعد جنات کو حکم دیتے کہ اب تم پیچھے ہو جاؤ، اب اس کا کام ختم۔ آج بھی دیکھیں جیولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تیل ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ پیچھے، پھر لیبر ورک شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جنات خوب کام کر کے پانی نکالتے تھے، اور خود خود اپنی تیز نظروں کے ساتھ زمین کے نیچے دیکھ لیتا ہے۔ ایک بڑا پیارا قول ہے حضرت ابن عباس کا، فرماتے ہیں کہ جاننے والوں اس حقیقت کو پہچانو کہ خود خود زمین کی گہرائی کی چیزوں کو تو دیکھ لیتا ہے، لیکن زمین کے اوپر پھیلا ہوا جال اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں پھنس جاتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ انسان کتنا ہی کیوں نہ عقل مند ہو جائے، کتنا ہی زیرک، کتنا زیادہ مختار ہو، جو تکلیف یا راحت اس کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہوتی ہے وہ اس کو پہنچ کے رہتی ہے۔ کئی ساری زندگی دوسروں کے تصفیہ کرانے والے، ان کی بیٹیوں کے، ان کے بیٹوں کے، اپنے بچوں کے کسی صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی ناپ تول کے کھانے والے، تول تول کے لوگ کھاتے ہیں، دل کے مریض بن جاتے ہیں۔ یہ اوپر کی ذات ہے کہ بعض دفعہ زمین کی تہیں دکھتی ہیں، بعض دفعہ بندے کو بڑی بڑی چیزیں دکھتی ہیں، چھوٹی چیزیں نہیں دکھتی۔ مثلاً کسی سائنسدان کی غالباً بات یاد آ رہی ہے، نام نہیں یاد، اس نے بہت بڑی انوینشن کی، لیکن کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ خربوزہ کھاتے کیسے ہیں، اس لیے آج تک کھایا ہی نہیں۔ کاٹ کے کھاتے ہیں، ملیدہ بناتے ہیں، اس کی پھانکے کرتے ہیں، کدھر سے کاٹتے ہیں۔ تو کسی کو بڑی چیز نہیں پتا، کسی کو چھوٹی نہیں پتا، کوئی حرفن مولا نہیں ہے۔ کل عذبن نہ ہو عذابن شدیدہ، ضرور اس کو عذاب دوں گا۔ اب ابتدائی غور و فکر کے بعد اب یہ حاکمانہ سیاست کا مظاہرہ ہے، نہ کہ یہ کہ غیر حاضر رہنے والے کو سزا دیجئے۔ یعنی یاد رکھیے کہ نبی کے ساتھ یہ بادشاہ بھی تھے۔ جہاں بھی آپ اس طرح کی سختی پائیں گے، آگے بھی پائیں گے آپ انشاءاللہ ان کے طریقہ تبلیغ میں بھی، تو ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت سلیمان نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ اور اگر بادشاہ اپنی عزت خود نہ کرائے نا، خود ذرا بڑے بن کے پروٹوکول سے نہ رہیں، تو کوئی ان کی بات بھی نہ مانے۔ پھر آگے کہا کہ لاز بہن نہ ہو اور لیاتینی بسلطان مبین۔ اس میں بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک دم سزا سنانے کے بعد فوراً یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی عذر پیش کرے تو میں پھر اس کو چھوڑ بھی دوں گا۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار شخص کوئی قانون فالو کرے، کوئی رول فالو کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کرنے سے پہلے دوسرے فریق کی حقیقت کو بھی جان لے۔ ایک اندھی چھری کے ساتھ سب کو ہی نہیں ذبح کرنا ہوتا، ایک ہی لاٹھی نہیں گھمانی ہوتی، हर तरह के हालात होते हैं, जो बातें होती हैं उसको किया जा सकता है। अब यहाँ पर कई मसाइल उठे कि क्या जी जानवरों को सजाएं देना हलाल है? क्या अगर इंसान गलती करें तो उनको सजा है, उनके लिए कुछ हदूद हैं तो जानवरों के लिए भी हैं कि नहीं है? तो बास कहते हैं कि हज़रत सुलेमान के दौर में जानवरों को सजाए देना हलाल था, आज नहीं है। याद रखिए, आज कोई जानवर रड़ी करे तो मालिक ऐसी कोई सजा नहीं देगा। आज भी हल्की सी चोट लगाई जा सकती है, जो लोग सामान उठवाते हैं जानवरों से, अगर वो ना चले तो हल्का सा उसको चपत लगाई जा सकती है, लेकिन उसमें शिद्दत नहीं होनी चाहिए। फमकस गैरा बईब, बस कुछ थोड़ी सी भी देर ना गुजरी थी, यानी हज़रत सुलेमान को गुस्सा आए हुए या ये बातें कहे हुए कि क्या हुआ, वापस आ गया वो कौन, खुद खुद। फ़काला, तो कहने लगा, अहत तो बीमा लम तो हत बिही, मैं तो एक ऐसी इत्तला लेकर आया हूँ जिसकी आपको खबर ही ना थी। लगता है खूब बड़बोला भी था, आगे से बोल भी लेता था। बाज ने सिर्फ इस एक जुमले पे बातें की, यानी हज़रत सुलेमान के आगे ले लें तो उनकी रियाया में से था, या अगर एक उस्ताद है तो उसके आगे एक शागिर्द था। बाज तो कहते हैं कि ये हज़रत सुलेमान के शागिर्द थे सारे, ये परिंदों को जानवरों को इस तरह से सबक भी दिया करते थे। तो उस नाते से पूरी पूरी तफसीरें इस पर लिखी हुई हैं मुफस्सरीन ने, कि अगर कोई शागिर्द इस तरह से उस्ताद के आगे बोले तो क्या ये अच्छी बात है कि मुझे तो वो पता है जो आपको नहीं पता। तो पहली बात है कि वो इंसान नहीं था, खुद खुद था। खुद खुद तो कह ले ऐसी बातें, इंसान को तो नहीं कहनी चाहिए। यदि इसमें उस्ताद शागिर्द के अदब पे बात की गई है कि ये स्टाइल जी आपको तो वो पता ही नहीं जो मुझे पता है, ये स्टाइल मजहूल स्टाइल है, ये दुरुस्त नहीं है। एक और इससे बात बड़ी प्यारा पता चली, और वो कहें कि हज़रत सुलेमान को गैब का इल्म नहीं था। अगर आपको गैब का इल्म होता तो क्या फिर आप इतनी बातें पूछते? आपको तो वो सारी बातें जो आपको अभी बताने लगा है पहले से पता चल चुकी होती। फिर अगली बात इससे ये पता चली कि खुद खुद जो दूर गया था या देर से आ गया था, तो उसने आते ही अपनी रीज़न बताई कि मेरे दूर जाने की या रहने की वजह क्या थी, कि मैं उससे भी अहम काम करके आया हूँ। देखिए कि एक इंसान के पास बहुत ही खूबसूरत इससे क्राइटेरियन आ जाता है, और वो क्या है कि मैं जहाँ भी हूँ ना, मिसाल है कि अगर आप यहाँ कुरान सीख रहे हैं ना, सभी सीखने के लिए आ रहे हैं, अगर आप यहाँ से उठें इस क्लास के दौरान के वक्त में छुट्टी करें या जाएं, तो फौरन खुद से सवाल करें कि क्या इस काम से कोई दूसरी अहम काम करने लगा हूँ, और दूसरी बात है कि क्या वो दूसरा काम इससे किसी और मुख्तलिफ वक्त में नहीं हो सकता था। वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, और मैं लेकर आया हूँ आपके पास मुल्के सबा से एक यकीनी खबर। अब ये गुस्सा भी ठंडा करा रहा है और बातें भी बता रहा है। यहाँ सबा का लफ्ज़ आया, यमन का एक मशहूर शहर था जिसका दूसरा नाम मारिब भी है, आगे आएगा एक और सूरत में सद्दे मारिब के नाम पे। इसके और यमन के दारुल हुकूमत जिसका नाम सना, स्वाद नून आइन, 3 दिन की मुसाफत। ये सना से वो अब्रहा लश्कर अपना लेके उठा था जिसने खाना काबा पर हमला करने की कोशिश की थी। इसने आके सुनाया कि आज तो मैं दूर चला गया और देखो मैंने वहाँ जाके एक बड़ी सच्ची खबर बताई है। इससे भी पता चलता है कि कोई इत्तला अगर किसी को दी जाए, यानी जिम्मेदारान तक जो भी बात पहुँचाई जाए, वो सिर्फ गुमान और जन पे नहीं मबनी होनी चाहिए, यकीनी बात होनी चाहिए। बात लोग इस तरह की सुनी सुनाई बातें, उड़ी उड़ाई बातें आगे कर देते हैं, जिससे बाद में फिर बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी होती है और उनको भी शर्मिंदगी होती है। बाद में पता चलता है अच्छा मुझे तो किसी ने यही बताया था। तो इससे एक अमल की बात और नोट करते हैं कि कभी भी ज़ुबान से कोई बात निकालें तो सोच लें कि जब असल हकीकत खुलेगी तो मेरी कितनी शर्मिंदगी मुझे होगी और मेरी एक बैड रेपुटेशन होगी। और वाकई आप देखें कि कुछ लोग इतना नपतुला बोलते हैं कि उनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि नबा यकीन के सिवा कोई और भी बात करेंगे। तो कभी कोई बात करें, किसी के आपके सुनी है बात, कोई ये कह रहा है वो कह रहा है, तो आपके पास उसकी कोई ना कोई सनद होनी चाहिए। नबी सल्लम भी अपने सहाबा को कहा करते थे कि तुम मुझे किसी तीसरे के बारे में ऐसी बात ना कहा करो कि मेरे दिल में मैल आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं जिससे भी मिलूँ तो बहुत ही अच्छे दिल के साथ मिलूँ। तो बहरहाल इसने अपनी सच्चाई पेश कर दी। अब वो खबर क्या थी? इन्नी वजद तुम रातन तम लिकुहुम, बेशक मैंने एक ऐसी औरत को पाया है जो उनकी हुक्मरानी करती है। वह ऊतियत मिन कुल्ली शयम वलहा अर्शुन अजीम, और उसे दी गई है हर किस्म की चीज़ से, और उसका एक अजीम शान तख्त भी है, और वजत्तुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह, और इसको और इसकी कौम को मैंने पाया कि वो सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह के सिवा। वज़य्यन लहुमुश्शैतान आमालहुम, और आरास्ता कर दिए हैं शैतान ने उनके ये आमाल उनके लिए। फसद्दहुम अनिस्सबील, और इस मुशरिकाना अमल ने या शैतान ने उनको रोक दिया है सीधे रास्ते से, लिहाजा ला यहतदून, वो हिदायत नहीं पाते, सीधे रास्ते पे नहीं आते। देखिए ये एक परिंदे की बातें हैं, उसको तौहीद ज़्यादा पता है अक़ल रखने वाले इंसानों से। ये है वो फितरत, वो शरीयत जो अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर वदियत की हुई है। सूरत मायदा पढ़ाते हुए आपको ये बात बताई थी मैंने कि इंसानों की शरीयत किताबों में लिखी हुई है ना, कुरान में, पिछली किताबों में, जबकि जानवरों की शरीयत जो है ना इनके अंदर इनग्रेव है, बिल्कुल अंदर, जिस तरह कहते हैं ना, इनके डाटा में डल गई है। ना तो खुदहुद ने कोई तौहीद पे दर्स सुना था, ना सूरत कुल हो अल्लाह पढ़ी थी, ना इखलास पढ़ी थी, ना उसको आयतुल कुर्सी पढ़ाई गई थी। ये उसके अंदर की पुकार थी कि वो शिर्क की उन बारीकियों को समझ चुका था जो कि बड़े बड़े इंसानों को समझ नहीं आते। फिरौन की तरह सबा मुल्क की जो शहजादी थी या मलका थी, ये भी सूरज देवता की पुजारी थी। लेकिन इसके और फिरौन के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क था कि फिरौन मुतकब्बिर भी था और ये देखा देखी ये काम कर रही थी। यह एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है हमारे लिए, और वो क्या कि बाज़ मुशरिक सिर्फ़ देखा देखी मुशरिक होते हैं, जिस तरह बाज़ मुसलमान सिर्फ देखा देखी के मुसलमान होते हैं। जो देखा देखी के मुशरिक होते हैं ना, जब उन तक पैगाम पहुंचाया जाए तो वो मान जाते हैं, और जो दिल के साथ अकड़े हुए तकब्बुर वाले होते हैं वो नहीं मानते। तो जब दावत के लिए निकले ना, तो पहले परखें लोगों को, टटोल के देखें। आप देखिए, आप कहते हैं हमने कहाँ निकलना है दूसरों को दावत देने के लिए, ज़ुबान तो हमें आती नहीं दूसरों की। आप अपनों में निकलें, आप किस इंसान को परखना चाहते हैं ना। असल मैं कहती हूँ, जब आप किसी का रिश्ता देखते हैं ना, तो रिश्ते के वक्त भी आपको ये पता चल जाता है ना, फलां नेक है फलां नहीं है। बाद में हम कहते हैं अच्छा हो जाएगा बाद में ठीक, लड़का कर देते हैं शादी हो जाएगा। चेक करें क्यों ख़राब है, इसकी अंदर जड़ें ख़राब हो चुकी हैं या ऊपर ऊपर का असर है, ये सिर्फ माहौल का असर है या कि इसके अंदर ये बुराई आ चुकी है। इसी तरह लड़की को भी परखा जाता है। तो हमेशा हिकमत मांगे। आगे जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उससे पता चलता है कि इसका कुफर या इसका शिर्क बावजूद देखने में बिल्कुल फिरौन जैसा था, लेकिन फिरौन और इसके रद्दे अमल में फ़र्क दिखाता है कि इसका देखना करना सिर्फ एक माहौल का असर था, और बाकी दूसरी बात यह है कि ये उस तरह के दर्जे की ख़राब नहीं थी। फिर एक और बात इन आयात में है औरत की हुक्मरानी के बारे में। हुदहुद को इस चीज़ पे हैरत हुई कि एक औरत जो है वो हुक्मरान बनी। इमरातन तमलिकू, पहली हैरत उसको ये हुई कि एक औरत हुक्मरान है। फिर दूसरी हैरत ये हुई थी कि सब कुछ उसको दिया गया और इसके बावजूद भी वो अल्लाह को छोड़ के किसी और को पूछती है। इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? सही बुखारी की रिवायत इब्ने अब्बास से, अल्लाह के नबी को जब पता चला कि अहले फ़ारस ने अपने मुल्क का बादशाह किसरा की बेटी को हुक्मरान बना दिया, पहले किसरा था फिर उसकी बेटी बना दी गई, तो आपने फरमाया लें युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन, वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने अपने इक्तदार का मालिक औरत को बना दिया। इसलिए इस्लाम में औरत हुक्मरान नहीं बन सकती। लेकिन अफसोस की बात है कि ये शर्फ भी हम मुसलमानों को ही हासिल है। और आपको पता है कि अमेरिका का सदर औरत नहीं बन सकती, लेकिन हमारे मुल्क में बन सकता है। तो ये एक इस्लाम से दूरी की एक हमारी दलील समझ में आती है। बाकी ये मलका सबा कौन थी, इसके बारे में बहुत सारी रिवायात में लोगों ने चीज़ें लिखी। यहाँ तक लोगों ने लिखा कि इसकी माँ जो थी जिन्नी थी, यानी इसका बाप इंसान था, मर्द था, और एक जिन से उसकी शादी हुई। बहुत खुदपरस्त था, मतलब उसको बहुत ही अपने आप से मोहब्बत थी, तो उसने बिल आखिर जिन औरत से क्यों शादी की, कहने लगा कि मैंने आज तक कोई अपने बराबर की कोई औरत ही नहीं देखी। तो लिहाजा जब उसने उससे शादी की, उसके बाद फिर ये बच्ची पैदा हुई। अब ज़ाहिर है कि बाप की तरफ से थी तो ये भी इंसान ही थी, लेकिन कुछ ना कुछ माँ का असर था। ये बात है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं, ना इतनी बातों का कोई इससे फ़ायदा होता है, लेकिन सिर्फ ये एक बात चूँकि आती है तो आपसे ज़िक्र कर दी। और कहते हैं कि इसने अपने आप को फिर उस मुल्क के लिए रखा। फिर अगली आयत जो ये सजदे की भी आयत है, और सजदे तिलावत का किसी जगह पे आना हमें क्या माना देता है। देखते हैं आयत 25 को। अल्लाह यसजुदु लिल्लाहि अल्लज़ी युख्रिजुल खब्ब फिस समावाति वल अर्ध। वो क्यों ना सजदा करें उस अल्लाह को जो निकालता है छुपी हुई चीज़ों को या दाने को आसमानों और ज़मीन में से। वयालमु मा तुख्फून व मा तुलिनून, और वो जानता है जो छुपाते हो तुम और जो तुम जाहिर करते हो। कौन है वो ज़ात? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह नहीं है कोई माबूद बजुस उसके। और वो कौन है? वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो मालिक है अर्श अज़ीम का। ये जो आखिरी आयत है 26 नंबर, ये है सजदे की आयत। पीछे बात हुई सूरज को पूजने की, तो यहाँ पे सजदा आ गया कि सूरज को नहीं, सूरज के रब को पूजो, अल्लाह को पूजो। और आप देखिए ये कॉल भी हुदहुद का ही लगता है। क्यों नहीं सजदा करते अल्लाह को जो दाने को निकालता है? अब यहाँ हब को फिर समावाती वलर से निकालने को ज़रा हुदहुद के साथ रिलेट करें तो क्या बात समझ आती है कि हो चुके ज़मीन के अंदर देख लेता था ना, तो उसने मिसाल भी वही दी। हर बंदा जो बात करता है ना उसके अंदर से निकलती है। अंदर खाली होगा ना खोखले दावे, अंदर ईमान होगा तो ईमान वाली बात निकलेगी, अंदर शोखी होगी तो शोखी वाली बातें निकलेंगी, अंदर फिस्क और फजूर होगा तो फिस्क वाली बातें निकलेंगी, अंदर निफाक होगा तो बाहर भी निफाक ही दिखेगा। अल्लाह ताला हमारे अंदर को अच्छा कर दे। तो यहाँ पे ये सबक पूरा होता है। एक छोटी बात रहेगी वो भी बता दूं, जो उस औरत के अर्श की बात हुई इसको ज़रा देखिएगा। वलहा अर्शुन अजीम, उसका एक बहुत बड़ा अर्श है। ये क्या था अर्श? यहाँ तख्त के मानों में, यानी जो बादशाहों के अमूमन तख्ते सल्तनत होते थे। और हज़रत इब्ने अब्बास से एक रिवायत आती है कि इस मलका का नाम बिल्कीस था, वैसे सबा की थी लेकिन नाम बिल्कीस था। तो 80 हाथ लंबा और 40 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा था, जिस पे लूलू मोती और इस तरह के बहुत कीमती जवाहरात थे। क्योंकि आगे इस अर्श की बात आनी है तो इसलिए मैंने कहा कि आपको ये भी बता दूं कि वो काफ़ी ज़्यादा यानी कीमती किस्म का तख्त था। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन बातों में से अपने लिए अमल की तौफीक लेने वाला बना दे। या आयत सजदा है, अगर कोई सजदा करना चाहे तो कर सकता है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।